सर, मुझे सुनकर बहुत आनंद हुआ कि बगैर किसी तरह का बोझ रखे जो मेरे मन में आए वो आपसे कह सकूं। ये अभी जो प्रश्न पूछे गए उनको भी मैं सिलेबस नहीं समझता कि इनको लेकर ही मुझे कुछ कहना चाहिए और सारी जितने बातें उठाई गई हैं उनके विषय में कहना चाहिए, इतना मैं मेरा दावा भी नहीं है कि सारी बातों के लिए के विषय में मैंने बहुत सोचा है और सब कुछ कह सकता हूँ। लेकिन इधर जो बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही है उससे मैं शुरू करूँगा, और वो है हमारे सार्वजनिक जीवन में इंदिरा जी का फिर से आविर्भाव। इसको जितना लोग हंसी में उड़ा देते हैं या जितना मामूली चीज समझते हैं, मैं इतनी नहीं समझता। इसकी गहराई में हमको उतरना चाहिए। इंदिरा जी बहुत चतुर हैं, पैतरे कैसे रखे जाएं और कब रखे जाएं इसके विषय में उन्हें विचार नहीं करना पड़ता। कुछ उनको एक अंतर्ज्ञान है उन्हें। स्वाभाविक रूप से कुछ वो परिस्थिति को भांप लेती है, जिसे सेंट कहते हैं ना, SENT, गंध आती है परिस्थिति की। जवाहरलाल जी ने गांधी के बारे में लिखा है कि परिस्थिति को की गंध उन्हें आती है। असल में ये पशु का लक्षण है, गंधे न गाव पश्चन, पशु गंध से देखते हैं। शास्त्र ही पश्चन की पंडिता, पंडित शास्त्र से देखते हैं, और राजा चारई पश्यंती राजा न, राजा जासूसों की आंख से देखता है, अपनी आंख से नहीं। और हम इतरे जन हैं, चक्षुर्भ्याम इतरे जन, हमारे सिर्फ आंखें होती हैं, हम अपनी आंख से देखते हैं। इतर जो सामान्य आदमी होता है उसकी आंख होती है, वो और किसी की आंख से शास्त्र की भी नहीं, जासूस की आंख से भी नहीं, और गंध से भी नहीं, आंख से देखता है। लेकिन इनको इंस्टिंक्ट है, इंदिरा जी को। तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूं कि आदिवासी क्षेत्र में और अस्पृश्यों के क्षेत्र में क्यों जाती, इन्हीं क्षेत्रों को क्यों चुना। ये विवाद छोड़ दीजिए, ये राजनीतिज्ञों का विवाद है, तुम्हारे वक्त क्या होता था, हमारे वक्त क्या हो रहा है, इसमें हमको नहीं पढ़ना। इंदिरा जी के कदमों को पहचानना, इसलिए नहीं कि वो इंदिरा जी के कदम है, हमारे देश की स्थिति के कारण। श्री कृष्ण में ये शक्ति थी। जब देखा कि भीम जरासंध से नहीं जीत पा रहा है तो पता लगाया कि इसकी कमजोरी कहाँ है, तो मालूम हुआ कि उसकी माँ ने ये वरदान दिया था जरा ने कि ये जमीन पर जब तक गिरेगा तो इसके दो टुकड़े भी हो जाएंगे तब भी ये उठकर रहेगा। तो श्री कृष्ण ने भीम को सूचना की कि दो टुकड़े तो करो लेकिन अलग अलग फेंक दो, तो ये मरेगा। दुर्योधन के बारे में, वो दुर्योधन को भी नहीं जीत सकता था। ये आप खूब समझ लीजिए कि शक्ति सारी दुर्जनों में ज्यादा रही है या सज्जनों में शक्ति बहुत कम रही है, तो ये युक्ति से ही काम ज्यादा लेते थे, मुत्सद्दी होते थे। तो दुर्योधन की भी जांघ में कुछ रह गया था, जान का एक हिस्सा रह गया था जो कमजोर रह गया, तो श्री कृष्ण ने इशारा किया कि इसकी जान में तुम गदा मारो। तो ये जनता पार्टी की जांग है, जहां पर इंदिरा जी ने हमला करना तय कर लिया, और ये हमारे देश के लिए मामूली समस्या नहीं है, वर्ग की समस्या सारे देशों में है, लेकिन वर्ग के साथ धर्म जुड़ा हुआ कहीं नहीं। वर्ण की समस्या, काले गोरे की समस्या दुनिया भर में है, लेकिन उसके साथ धर्म का कोई संबंध नहीं, धर्म उसके साथ जुड़ा नहीं है। हमारे देश में जाति और अस्पृश्यता के साथ धर्म जुड़ा हुआ है, परलोक जुड़ा हुआ है, और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि हमने अब तक इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। गांधी जी ने दिया कि वेदों में यह है कि नहीं, वेदों में अस्पृश्यता को माना गया है या नहीं, ये सारी बातें करने की कोशिश की, लेकिन वो तो शास्त्रियों में मतभेद होता है। मेरा ऐसा विचार है इस संबंध में कि धर्म निरपेक्ष मानवता का अब हमको सारे देश में प्रसार करना चाहिए, लोगों में इसको फैलाना चाहिए। धर्माश्रित मानवता नहीं, मानवता चाहिए लेकिन धर्म निरपेक्ष। इसका कारण मैं आपको बता दूं कि यह हमारा देश ऐसा देश है जिसमें जाति का आचार नैतिक आचरण से श्रेष्ठ माना गया है। मैं तो धार्मिक कुल में ही पैदा हुआ हूं, तो मैंने ये देखा कि मेरे घर में जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता था उसका अनादर नहीं होता था समाज में, लेकिन जो कोई जो व्यक्ति किसी दूसरी जाति के घर खा लेता था उसको सारा समाज अनादर से देखता था। जाति के नियमों का पालन नीति के नियमों के पालन से श्रेष्ठ माना गया था, इसलिए अंग्रेजों ने जिस नैतिकता को यहां पर बोना चाहा, जिस नैतिकता के बीज यहां बोने चाहे, वो जड़ नहीं पकड़ सके। ब्राह्मण चोर भंगी चोर समान है। अब ये चीज अंग्रेजों से पहले हमारे देश में कभी थी ही नहीं। मनुस्मृति में ब्राह्मण चोर के लिए अलग दंड है, सजा है, और शूद्र चोर के लिए अलग सजा। हर एक को सारी चीजों के बरतने का अधिकार है, ये हमारे देश में कभी था नहीं। कोई भी शूद्र मिट्टी के बर्तनों से बाहर दूसरे बर्तन रख नहीं सकता। ये सब मनु के नियम है जो मैं आपको सुना रहा हूं। सोने चांदी के गहने नहीं पहन सकता था। 1935 में मैं राजस्थान में गया था, तो राजपूत अगर चला हो तो जाट उसके सामने घोड़े पर नहीं बैठ सकता, घोड़े पर आ रहा हो तो उसे उतर जाना पड़ता था। मेरे घर के लोग और मेरी माँ के नैहर के लोग अस्पृश्यों को गुस्से में आकर जूता मार देते थे, लेकिन उसका स्पर्श हो गया इसलिए बाद में नहाते थे। ये जो गहराई है इसकी, इसका विचार करना बहुत आवश्यक है। हमने सबने सेक्युलरिज्म को कंडेम करना शुरू कर दिया कि सेक्युलरिज्म गॉडलेसनेस है, धर्महीनता है, नास्तिकता है। मित्रों, ये जिस होली ओक उसका नाम था, यह सेक्युलरिज्म शब्द होली ओक ने प्रचलित किया पहले पहल। ये धर्म को नहीं मानते थे लेकिन मनुष्य को मानते थे, मनुष्य जीवन को और जीव को मानते थे। तो मनुष्यता का उसमें बहुत बड़ा मूल्य है, मनुष्य का मूल्य बढ़ाना है। अंग्रेजी में एक शब्द है फिलंथ्रॉफी, जिसका हमने अर्थ बहुत गलत कर दिया है। उसका असली अर्थ है मनुष्य से प्रेम। फाइलस का मतलब है प्रेम और एंथ्रोपस का मतलब है मनुष्य। तो मनुष्य से प्रेम फिलंथ्रॉफी है, ये दान धर्म फिलंथ्रॉफी नहीं है, चैरिटी फिलंथ्रॉफी थोड़ी है। तो इस अर्थ में हमको इस देश में सेक्युलरिज्म को अपनाना चाहिए, धर्म निरपेक्ष मानवता। अब वहां नीगड़ों का और गोरे आदमियों का झगड़ा है, लेकिन उस तरह का नहीं है जहां जैसा यहां के अस्पृश्य का और ब्राह्मण का है। यहां के ब्राह्मण को अस्पृश्य का स्पर्श अगर हो जाए तो वो ये मानता है कि मैं नरक में जाऊंगा, मैंने अधर्म किया। और अस्पृश्य भी ये मानता है कि मैं अगर ब्राह्मण को छूता हूं तो मैं भी नरक में जाऊंगा। तो जिसे आप केवल प्रेजुडिस कहते हैं उस तरह की ये चीज नहीं है, ये रिलीजियस प्रेजुडिस है। जेपी ने वर्ग संघर्ष वगैरह की बात कही, लेकिन वो उतना कहने से इस गहराई में आदमी नहीं उतरता है। इस धर्म पर ही हमको आक्रमण करना होगा। इस अर्थ में वेदों में है या शास्त्रों में है ये प्रश्न ही नहीं है। जैसे आपने सती के बारे में किया या हेड हंटिंग, ये हेड हंटिंग था ना, सब नागा लोग सर काटते थे। और इनके यहाँ आप जाइए तो जिस नागा के घर में जितने शर हों उतना वो बहादुर और अच्छा समझा जाता है। ये बंद किया, ये धर्म नहीं है, अधर्म है, क्योंकि इसमें मनुष्य द्रोह है, जीवन द्रोह है। इस बात को समझाना बहुत आवश्यक है, हम इसको अब तक समझा नहीं सके। कांति भाई ने वो सवाल उठाया है कि क्या कमी रह गई। यह कमी रह गई, सबसे बड़ी कमी रह गई हमारे भूदान आंदोलन। सहयोग का आंदोलन था, करुणा का आंदोलन था, लेकिन मानवीय समानता पर जोर नहीं दिया गया। इसलिए वो कहीं आकर एक जगह आकर रुक गया। तो मेरा ये आग्रह है, मैं इसका अब कोई आपके सामने नुस्खा नहीं रख सकता हूं, प्रिस्क्रिप्शन नहीं रख सकता हूं, लेकिन जितने जोर से ये हो सके उतने जोर से ये कहना चाहिए। इसके लिए हमको तैयार हो जाना चाहिए। दूसरी चीज जो मुझे खटकती रही है वो यह खटकती रही है कि हमने राजनैतिक राजनीति से, यहां मेरा मतलब है चुनाव की राजनीति, दूसरी राजनीति को मैं राजनीति मानता नहीं हूं। मित्रों, राजनीति के सिवा जीवन असंभव है। वोट राजनीति है, मनुष्य का मत देना राजनीति है, पॉलिटिक्स ही है। अब उसका शब्द अर्थ बदल दिया, असल में पॉलिटिक्स का अर्थ है नागरिकता, पॉलिस का अर्थ है नगर, मेट्रोपोलिस महानगर, कॉस्मोपोलिस विश्वनगर। तो जो नगर में रहने योग्य है, नगर में व्यवहार नागरिक और नागरिक के व्यवहार का नाम पॉलिटिक्स है। असल नागरिक का पारस्पर नागरिकों का परस्पर व्यवहार ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स है ही क्या। इसलिए अरिस्टोटल ने कहा कि मनुष्य पॉलिटिकल जीव है, राजनीतिक जीव है यानी सामाजिक जीव है। लेकिन मैं यहाँ पॉलिटिक्स शब्द का आज के अर्थ में उसका प्रयोग कर रहा हूँ, चुनाव की राजनीति। इस चुनाव की राजनीति में हमने संप्रदायवादी लोगों से लाभ उठाने की कोशिश की। इसमें मैं पूछे मुड़कर देखता हूँ तो उस वक्त भी मेरे मन में ये चीज़ उस वक्त भी थी, मैं था 20-21 साल का ही, लेकिन उस वक्त भी मेरे मन में ये चीज़ खटकती थी कि यह खिलाफत का मामला गांधी ने क्यों उठाया। यहाँ तो शंकराचार्य को मानता नहीं था कभी, इस देश में किसी धर्मगुरु को महंत को गांधी ने माना नहीं, और अस्पृश्यता के प्रश्न को लेकर तो सारे शंकराचार्यों का विरोध किया। फिर इस दतियानुसी खिलाफत को क्यों माना? हाँ खिलाफत जानते नहीं है, खलीफ ये तुर्किस्तान में मुसलमानों का सबसे श्रेष्ठ धर्मगुरु माना जाता था, जैसा हमारे यहाँ शंकराचार्य। असल में ये कमाल जो था अतातुर्क, इसी ने उसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन बाद में जब युद्ध हुआ 1914 का, तो अंग्रेज़ों ने उस संस्था का अंत कर दिया, तो सारे देश में मुसलमानों ने हमारे धर्म पर आक्रमण हुआ। तो गांधी ने इससे लाभ उठाना चाहा, पॉलिटिकली नहीं, यानी गांधी एक्सप्लॉइट करने वाला आदमी नहीं था, लेकिन उसने ईमानदारी से ये माना कि इस मौके पर हिंदू मुसलमान एक हो सकते हैं। एक सूत्र है बर्नार्ड शॉ का सूत्र है बड़ा मजे का, कि किसी मनुष्य के हृदय में प्रवेश करना हो तो उसकी धर्म के द्वारा करो। अब ये कोई राजनीतिक सूत्र नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, किसी मनुष्य के हृदय में प्रवेश उसके धर्म के द्वारा करो। तो गांधी ने लिखा टू मी द खिलाफत इज द काउ, ये जैसी गाय मेरे लिए पवित्र है ऐसी खिलाफत है, क्योंकि मुसलमान उसको मानते हैं। अब मेरा यह कहना है कि इससे आगे हमको बढ़ना चाहिए। उस वक्त मुझे खटकती थी, हम वंदे मातरम कहते थे, वल्लाह अकबर ही कहता था। अब मुझे ये चीज़ हमेशा खटकती थी कि ये वंदे मातरम क्यों नहीं कह सकता है, अल्लाह अकबर ही क्यों कहता है हमेशा। और हमारे यहाँ कोई लोकनायक हो जाता था, कोई नरकेसरी हो जाता था, कोई राजस्थान केसरी, कोई विदर्भ केसरी, इस तरह से होते थे। इनमें तो छोटे से छोटा तांगे वाला भी अगर हमारे आंदोलन में आता था तो मौलाना मौलवी, नहीं समझ में ही नहीं आता था कि मौलाना मौलवी यहाँ क्या जरूरत है। ये तो आया है स्वराज्य के आंदोलन में, हमारे यहाँ के कोई महामहोपाध्याय थोड़े आए हैं, कोई शास्त्री पंडित, लेकिन ये तो आया और मौलाना ही बन गया। और दुहाई हमेशा कुरान की देता था, हमने इस तरह से वेदों की दुहाई नहीं दी, आर्य समाजों ने दी होगी, लेकिन हम वेदों के नाम पर कुछ स्वराज्य का आंदोलन नहीं लड़े, या गीता के नाम पर भी नहीं लड़े, लेकिन ये तो कुरान की ही दुहाई देता था। इस परंपरा में से पाकिस्तान आया, ये हमको आज गहराई के साथ सोच कर समझ लेना चाहिए। गांधी ने जो किया वो ईमानदारी से किया, अच्छी नीयत से किया, लेकिन उसका नतीजा यह है। और यहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू सभा और जनसंघ की बात सही है कि इस देश के टुकड़े के लिए हम सब जिम्मेवार हैं। वो भी हैं, वो कैसे हैं बताऊंगा, लेकिन हम सब जिम्मेवार हैं, इतनी अपनी जिम्मेवारी मान लेनी चाहिए। अब ये चुनाव हुए, इसमें भी वो जामा मस्जिद का वो आया इमाम, जुम्मा मस्जिद का इमाम चुनाव में क्यों आता है? शंकराचार्य आया, कोई आपका धर्मगुरु आए, उसका क्या संबंध है? लेकिन वो नहीं आएगा तो मुसलमान नहीं आएंगे। इसका कारण यह, इसका नतीजा यह हुआ कि मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं बन सका। यह आपस में बैठकर जिन बातों को खोलना है उनको मैं खोल रहा हूं। यह मैं किसी सार्वजनिक व्यासपीठ पर से नहीं कहूंगा, लेकिन इन सारी चीजों को हमें तो समझना होगा ना। वो इस देश का नागरिक बन नहीं सका। नतीजा यह है कि उसके लिए सारी देश दुनिया में इस्लाम पहले, मनुष्य बाद में है। मैं देश भी नहीं कह रहा हूं, मनुष्य। इस्लाम पहले, मनुष्य बाद में। नासिक के सम्मेलन में बांग्लादेश के लिए जब आंदोलन हो रहा था, अगर आप में से किसी को याद हो तो मैंने ये बात कही थी कि इनको बंगाली भाषा अगर इतनी प्रिय थी तो ये हमसे अलग क्यों हुए? एक बंगाल के दो बंगाल क्यों हुए? अगर मुजीब को बंगाली भाषा इतनी प्रिय थी तो क्या कारण था कि एक बंगाल के दो बंगाल बने? लेकिन उस वक्त तो हमारा मूड नहीं था ना इस बात का विचार करने का। और मैं भी जो कहता था कुछ दबी दबान से कहता था कि कहीं कोई हल्ला न मचा दे, दो तमाचे ने मुझे मार दिए। लेकिन ये चीज सोची नहीं गई कि जिन्होंने, भाषा तो उस वक्त भी थी, भाषा एक होते हुए भी जो अलग हुए वो क्यों हुए? इसीलिए हुए है ना कि ये हिंदू थे और मुसलमान थे, और तो कोई कारण नहीं था। तो ये भाषा का प्रश्न दोबारा गौण हो जाएगा, इसको हमको उसी वक्त समझ लेना चाहिए। बांग्लादेश की मदद हमको करनी ही थी, वो अवश्य करनी चाहिए। आज भी मानता हूं कि जो मदद की गई वो बहुत ठीक किया गया, जो कुछ उस वक्त किया गया वो आवश्यक था, वांछनीय भी था। लेकिन इतनी बात हमारे दिमाग में रह जानी चाहिए थी। जेपी ने बाद में जेल डायरी में सब लिखा है, बहुत जल्दी उनके ध्यान में आ गई ये चीज, लेकिन इसमें देर लगी। उस वक्त ये चीज हमारे ध्यान में रहनी चाहिए थी कि मुसलमान भिन्न धर्मियों के साथ समानता का अनुभव नहीं करता। एक मुसलमान और दूसरे मुसलमान में युद्ध हो सकता है, भय भी, उन लोगों में मतभेद भी रह सकता है, लेकिन जहां मुसलमान अन्य धर्मीय के साथ होगा वहां वो सारे मुसलमान को एक मानेगा, दूसरे मुसलमानों को एक मानेगा। इसी का नाम है एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिज्म। भारत यानी देश के बाहर निष्ठा है। अफगानिस्तान का मुसलमान, अरबस्तान का मुसलमान, तुर्किस्तान का मुसलमान यहां के गैर मुस्लिम से ज्यादा नजदीक का है। ये चीज मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली सब में देखी गई। सिर्फ मोहम्मद अली जीना ऐसा था जो इसमें शामिल नहीं था, बाद में तो वो पाकिस्तान का प्रवर्तक बन गया, लेकिन पहले इसमें वो शामिल नहीं था। ये चीज हिंदुओं में भी है। जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व को भारतीयत्व से व्यापक मानते हैं और इस भूमिका का त्याग, यानी व्यापकत्व का त्याग मैं नहीं कहता हूं, वो व्यापक नहीं है, मेरा कहना इतने है कि विशाल है, विशालता और व्यापकता में फर्क है। अन्य धर्मियों को जो शामिल करता है वो व्यापक है और केवल जिसका विस्तार बड़ा है वो विशाल है। तो सारे दुनिया के मुसलमान एक, ये विशाल विशालता है। सारे विश्व हिंदू परिषद, दुनिया में जितने हिंदू हैं वो सब एक हैं, ये विशालता है। लेकिन भारत में जो गैर हिंदू हैं वो और हम भारतीय मिलाकर भारतीय हैं, ये व्यापकता है। ये मुसलमान में नहीं है इस देश के, ये हिंदू मुस्लिम जो क्वेश्चन का अब तक चल रहा है, इसको इसकी बुनियादों में जाना चाहिए। केवल खुशामद से होने वाला नहीं है, क्यों मुसलमान नहीं आते हैं, क्यों मुसलमान नहीं आते हैं, हमारे किसी आंदोलन में नहीं आते हैं, कहीं नहीं आते हैं, प्रार्थनाओं में नहीं आते हैं, हम बार बार सुनते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना में तो अल्लाह ईश्वर तेरे नाम है, उनके यहाँ है क्या ईश्वर अल्लाह तेरे नाम किसी प्रार्थना में? क्यों नहीं ये प्रेरणा जागी? ये सोचने की बात है, इसको बहुत तटस्थता के साथ सोचना होगा। प्लेटिटिंग से, अब अनुरंजन से यह काम नहीं होने वाला, खुशामद से यह काम होने वाला नहीं है, दृढ़ता से ही होगा, सच्चाई से ही होगा, निष्पक्ष दृढ़ता। हम न हिंदुत्व के पक्षपाती हैं न इस्लामियत, लेकिन जहां जो गलती है, जहां जो कमी है उसको देखेंगे। विचार में क्यों हम डरें? आचार्य में डरना पड़ा तो डरिए, कोई अर्ज नहीं। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, समझौते करने पड़े, कीजिए, लेकिन विचार स्वच्छ रहना चाहिए। अब किशोरलाल भाई कभी कभी लिख देते थे कि भगवद गीता वेदों में अगर अस्पृश्यता हो तो मैं उसे नहीं मानूंगा, गांधी कहता था। तो कुरान में अगर किसी को काफिर कहा गया हो तो मैं नहीं मानूंगा, गांधी को कहना चाहिए। अगर वेदों को मैं मनुष्य के खिलाफ नहीं मानता हूं तो मनुष्य के विरोध में मैं कुरान को भी नहीं मानूंगा। बाइबल के लिए तो हम ये कह सकते थे। सारी दुनिया में मोहम्मद का जहां जहां जीवनी आई और उसमें मोहम्मद का चित्र आया तो दंगे हो गए। भाई मुसलमान मोहम्मद का चित्र न बनाए, लेकिन मौलाना साहब का चित्र अगर हो सकता है, मुसलमान अपने माँ बाप का चित्र तो रखते ही है, तो जो लोग चित्र बनाते हैं वो लोग चित्र क्यों न बनाए? उनका खून क्यों हो, वहां दंगे क्यों हो? हिंदू, नेपाल का हिंदू और भारत का हिंदू दोनों समान है, मैं मानता हूं, लेकिन नेपाल का हिंदू भारतीय नहीं है, यहां का मुसलमान भारतीय है। तो हिंदुत्व भारतीयत्व से व्यापक नहीं है, विशाल है। कम्युनिज्म है, सारी यहां का कम्युनिस्ट और बाहर का कम्युनिस्ट एक है, लेकिन वो बाहर का कम्युनिस्ट इंडियन नहीं है, ये मैं अपनी एक राष्ट्रीयता के विकास में जो क्रम जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ कि भारतीय एकात्मता के लिए अब तरुणों को क्या करना होगा, कहाँ उनको पहुँचना होगा, कितनी निर्भयता की आवश्यकता होगी। जैसे मैंने भूदान वगैरह के बारे में कहा, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि हमने अपनी राजनीति में गैर हिंदुओं में से यानी केवल मुसलमानों के धर्म गुरुओं की मदद ली है, ये बंद होनी चाहिए। प्रतिष्ठित नागरिक की मदद भी की, उसको कुछ समझाना हो तो मस्जिद में ही समझाना चाहिए और वो मौलाना मौलवी आकर समझाएं, ये क्यों? ईसाइयों को समझाने के लिए, पारसियों को समझाने के लिए उनके धर्मगुरु नहीं आते हैं, जैनों को समझाने के लिए कोई वो जैन मुनि आते हैं क्या? बौद्धों को समझाने के लिए नहीं आता है लेकिन, और ये सिख है, अब जरा कठोर शब्द है इसको बाद में भूल जाइए, मैं कर्ण के लिए नहीं कह रहा हूं, ये जूनियर मुसलमान। धर्म के साथ भाषा भी बदले, लिपि भी बदले, नाम भी बदले और भेष भी बदले, ये क्यों हो? कल अगर मैं सिख बन जाऊं तो क्या कारण है कि मेरी भाषा बदले और लिपि बदले और मेरी पोशाक बदले और चेहरा बदले? क्या मैं नानक को नहीं मान सकता हूं? विनोबा ने लिखा है, जपू जी, बौद्ध धर्म का सार लिखा है, कुरान सार लिखा है, और विनोबा विनोबा रह सकता है, तो हर नागरिक इस तरह से क्यों नहीं रह सकता? लेकिन ये आज खुलकर हम कह नहीं पाते हैं, खुलकर कह नहीं पाते हैं, तो आपस में तो सोचें, विचार में तो साफ हों इस मामले में। तो हिंदुओं का हिंदुत्व वाद और मुसलमानों का इस्लामवाद, ये दोनों मनुष्य द्रोही हैं। जब मैं भारत द्रोही कहता हूं तो आप मनुष्य द्रोही समझ लीजिए, क्योंकि भारत में ये सारी चीजें एक के बाद एक आई हैं। हमारी समस्याओं के साथ धर्म कैसे मिला हुआ है ये आपके सामने रख रहा हूं। हमारी समस्याएं केवल आर्थिक समस्याएं नहीं है, केवल राजनीतिक नहीं है, इनके साथ धर्म जुड़ा हुआ है। इसलिए इस देश में सिक्युलर ह्यूमैनिज्म, धर्म निरपेक्ष मानव्य की आवश्यकता है। अब धर्म निरपेक्ष कह लीजिए या संप्रदाय निरपेक्ष कह लीजिए, उसका अनुवाद चाहे जो कीजिए, लेकिन यहां एक मानवता की आवश्यकता है जो इस देश में नहीं था। और सारी चीजों का मूल्य था, हमारे देश में मनुष्य का मूल्य कभी नहीं था। मुसलमानों के आने के साथ हो सकता था, क्योंकि इस्लाम में जितनी समानता है और किसी देश धर्म में नहीं। मैंने इस्लाम का यह मुख्य आकर्षण माना है, हिंदुओं की निचली जातियों को इस्लाम का आकर्षण हुआ, उसका मुख्य कारण यह है कि इस्लाम में सारे मुसलमान समान हैं। लेकिन यह समानता इस्लाम तक मर्यादित है, समानता अवश्य है लेकिन सीमित है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के बराबर है, काला मुसलमान गोरा मुसलमान साथ खा सकते हैं, काला क्रिश्चियन गोरा क्रिश्चियन साथ नहीं खाते हैं, लेकिन ये खा सकते हैं, उसके साथ शादी भी हो सकती है, एक दस्तरखान पर बैठते हैं, एक दूसरे की थाली में खाते हैं। ये समानता दूसरे किसी धर्म में नहीं है, तो मुसलमानों के आने के बाद हो सकता था, लेकिन हुआ क्यों नहीं, वो मुसलमानों तक सीमित थी समानता। जो गैर मुस्लिम थे वो मुसलमानों के जमाने में समान नहीं थे। तो ये क्रिश्चियनिटी की देन नहीं है, ये मॉडर्न थॉट की देन है, आज के विचार का है कि ये देन है। इसको पश्चिम का विचार वगैरह मत कहिए, बार बार ये कहा जाता है कि ये सारे पश्चिम से विचार उधार लिए हैं। विचारों की उधारी में कोई पाप नहीं है, विचार किसी का नहीं। कालिदास का शाकुंतल उसने गोधे ने पढ़ा, बेटी ने, और उसकी तारीफ की, तो क्या हो गया उसमें से, क्या बिगड़ा उसका, संपन्न हुआ। तो ये अंग्रेजों के साथ इस देश में विचार आया कि ब्राह्मण भंगी समान है, हिंदू मुसलमान समान है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कॉमन लॉ समान होना चाहिए, इसका आग्रह रखें। कॉमन लॉ सबके लिए एक होना चाहिए, दोस्तियां नहीं करनी चाहिए तो किसी को नहीं करनी चाहिए। फिर आपको वोट चाहिए इसीलिए मुसलमान के धर्म में हम दस्तंदाजी नहीं करेंगे, ये कहना गलत। हिम्मत के साथ कहना चाहिए कि स्त्री का अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे कहीं भी। इसी सिलसिले में एक याद आ रही है, बेर सिलसिले की बात कर रहा हूँ, याद आ रही है, आज पश्चिम से जितने लोग आते हैं हमारी कुटुंब संस्था की बहुत तारीफ करते हैं। शंकरराव की दिल्ली पेकिंग यात्रा में जितने लड़के आए थे, और जवान और बूढ़े पश्चिम से, हमारी कुटुंब संस्था को देखकर बहुत तारीफ करते थे। और क्यों तारीफ करते थे कि ऐसी शांति हमारे यहाँ नहीं, हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा कोई नहीं। मैंने उनसे कहा, लेकिन वो तो मेरी बात को समझ नहीं सकते थे, आपसे कहता हूँ कि हमारी कुटुंब संस्था स्त्री को गौण मानव मानकर बनी। माता चाहे जितनी ऊंची हो, स्त्री गौण मानव है, और उसकी उस बुनियाद पर हमारी कुटुंब संस्था खड़ी। सेकेंडरी ह्यूमन बीइंग है, तारीफ तो क्या, गुलाम भी पहले वो पन्ना दाय ने तो राजा राजकुमार के लिए अपना बेटा भी दे दिया था। ये त्याग नहीं है मित्रों, ये गुलामी है, स्वामी निष्ठा है। स्त्री पुरुष निष्ठ रही है, और उसकी पुरुष निष्ठा के भरोसे ये सारी शांतिमय सुखमय कुटुंब संस्था चल रही है। पश्चिम के धोखे में मत आइए आप, वो लोग एक जगह पहुंचकर आगे बढ़ रहे हैं, उनमें आध्यात्मिक जिज्ञासा है और हमें आध्यात्मिक घमंड है, इसके सिवा कुछ है। तो इसको समझ लेना, एक सिलसिले में आ गई चीज, इसलिए मैंने कह दिया। मैं कह रहा था कि यहाँ के जो मुख्य समस्याएं हैं, अस्पृश्यता की समस्या है, जाति की समस्या है, सांप्रदायिक समस्या है, इन सारी समस्याओं की गहराई में अब जाना चाहिए। अब डरने का समय निकल गया। अभी परसों मेरे पास वो बोरा लड़के आए थे, धर्मगुरुओं के खिलाफ उन्होंने बगावत शुरू कर दी, और वहां तो शादियां वो करा रहे थे, 30 शादियां एक साथ, और सारे धर्म गुरुओं को चुनौती देकर। अब जयप्रकाश बाबू से लेकर मोरारजी तक तक सब डरेंगे इस बात के लिए कि हम इनकी अगर मदद करेंगे तो धर्म में हस्तक्षेप होगा दूसरे को। तो हम अपने को हिंदू समझकर क्यों भारतीय नहीं है, हम इस देश के नागरिक नहीं है, हम उनकी सहायता क्यों ना करें? इसलिए कि सारे मुसलमान उठेंगे कहेंगे हमारे धर्म में हस्तक्षेप हुआ, गांधी हिंदू था इसलिए अस्पृश्यता के खिलाफ कर सका। मुसलमानों में कोई गांधी हो ही नहीं रहा, मुसलमानों में अगर गांधी पैदा हुआ होता तो उनका नेता कभी नहीं बनता, उसको एक वोट नहीं मिलता। जितने राष्ट्रीय मुसलमान हुए सब हिंदुओं के भरोसे चुने जाते, वो अपनी जाति के नेता अपनी कौम के नेता कभी नहीं बन सके। इस कमजोरी को देखना है, ये कमजोरी है ये क्यों है, इसकी बुनियाद कहाँ है, इसको आप समझने की आवश्यकता है। पारसी है, अब पारसी क्या कम ऑर्थोडॉक्स है? लेकिन इसकी अपनी भाषा ही है, ये गुजराती बोलता है, पारसी की कोई भाषा नहीं, अवेस्ता पढ़ता होगा किसी भाषा में, लेकिन पारसियों की अपनी भाषा कोई नहीं। ऐसे ही पहले ये बोहरा था, ये खोजा था, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था तो हिंदी भाषण या उर्दू भाषण भी होते थे तो दक्षिण के मुसलमान खड़े हो जाते थे कि हम एक अक्षर नहीं समझते हैं, और अब उर्दू का नारा लगा रहे हैं। ईसाइयों की भाषा नहीं, ईसाइयों का वेश नहीं, ईसाइयों के कुछ नाम हैं लेकिन हिंदू नाम भी वो रखते हैं, और ईसाई कवि माइकल मधुसूदन दत्त है, मराठी में नारायण वामन टिळक था, ये सब कवि जो कविताएं लिखते हैं उनमें राम कृष्ण भीम सब आते हैं। इस देश के इतिहास को, इस देश की परंपरा को, इस देश के पूर्वजों को ये सब मानते हैं, यानी इस देश के भिन्न भिन्न संप्रदाय। लेकिन मुसलमान इसको मानता ही नहीं, उसके लिए भीम कोई नहीं है, वो कौन है, सोहराब रुस्तम, रुस्तम आएगा। तो इसमें हमारे दिल में अगर कटुता होगी तो हम एंटी मुस्लिम बन जाएंगे, हमारे दिल में अगर कटुता नहीं होगी तो एंटी कम्युनल बनेंगे, फिर वो किसी का भी कम्युनलिज्म, हिंदू का हो, सिख का हो, मुसलमान का हो, ईसाई का, और जहां वो ज्यादा होगा, जैसे अस्पृश्यता हिंदुओं में है, जाति हिंदुओं में है, तो हिंदू समाज से कहेंगे, संप्रदायवाद मुसलमानों में है तो उनसे कहेंगे, जहां धर्म का उन्माद अधिक है उस समाज से धर्म का उन्माद छोड़ने कहेंगे, जहां जाति नीति से बड़ी है वहां जाति के विषय में कहेंगे। अगर यह नहीं होगा तो मित्रों अब अनर्थ होने वाला है। अब ये आदिवासियों का सवाल है, इसी सिलसिले में अब इंदिरा जी आदिवासियों के क्षेत्र में भी जाते हैं। आदिवासियों के विषय में अभी हमारे मन का निश्चय नहीं हुआ कि इनके साथ क्या करना है, हमारे सर्वोदय में और बाहर भी आज ऐसे लोग हैं, पश्चिम में तो बहुत हैं, जिनको उनकी रहन सहन का बड़ा आकर्षण, आदिवासी संस्कृति का बड़ा आकर्षण, अगर आकर्षण है तो फिर आदिवासी सेवा की जरूरत ही क्या है? क्यों आदिवासी सेवा मंडल आप चला रहे हैं? ना आकर्षण है तो आप सब बन जाइए, हम तो आदिवासी बनना नहीं चाहते हैं, उनसे कहते हैं कि बस बहुत अच्छा, कितनी तारीफ कितनी तारीफ, मैं हैरान हूँ। वो जिस अवस्था में है मित्रों, उस अवस्था में सेंस ऑफ प्रॉपर्टी आ ही नहीं सकता। मिल्कियत और मालकियत की भावना पैदा ही नहीं हो सकती। तो कल वो शांतिदास की सारी बातें सुनने के बाद मेरे मन में ये विचार चल रहे थे कि ऑस्टेरिटी, जिसे आप ऑस्टेरिटी सादा जीवन कहते हैं, वो वॉलंटरी होता है। स्वेच्छा की सादगी अलग चीज है और जबरदस्ती की सादगी गुलामी। हमारे देश में जो गरीबी है वो दो तरह की है। आज कहाँ अहमदाबाद में हम लोग आ रहे थे तो एक नंगा साधु जा रहा था। अब अपरिग्रह इतना है कि एक लंगोटी भी नहीं रह सकती, इतना तो अपरिग्रह है। दो हमारे देश में दो छोर हैं बिल्कुल, इतना अपरिग्रह है, यहाँ तक पहुँच गया है आदमी की एक लंगोटी भी नहीं सह सकता। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हजारों आदमी ऐसे हैं जिनको एक लंगोटी भी नसीब नहीं है, इतनी गरीबी की लंगोटी भी नहीं है, इतना त्याग की लंगोटी भी नहीं सह सकता। ये एक कंट्रास्ट हमारे ही देश में है। गांधी जब थे तो ये गांधी सेवा संघ के सामने सवाल आया कि हमारे देश में ऑप्टिमम क्या हो, यानी कम से कम आवश्यकता क्या मानी जाए। किशोरलाल भाई ने कुछ लिख कर दिया था, राजेंद्र बाबू हमारे अध्यक्ष थे, उन्होंने मेरी तरफ देखकर पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा कि हमारे देश में त्याग की कोई मर्यादा नहीं, त्याग की कोई मर्यादा है, लंगोटी कोई न पहने तो आप उससे कह सकते हैं कि पहननी चाहिए, नहीं तो हम तुझे सजा देंगे, नंगे आदमी को नहीं घूमने देंगे रास्ते पर। उनको भी नग्नता का तो बहुत आकर्षण था, वो उनकी जो दक्षिण अफ्रीका की जेल डायरी वगैरह है। नग्नता का आकर्षण स्थितिक है, कला का आकर्षण है, लेकिन हमारे यहाँ की जो नग्नता है वो त्याग की है। इसलिए वहां तो आप कोई हद नहीं मान सकते। मैं राजा होता तो मैं कहता कि नंगा घूमेगा तो सजा करूंगा, अपने जंगल में रहो, क्यों हमारे शहरों में आते हैं। नग्न रहना है इसका मतलब भी है मनुष्य में नहीं रहना है, तो बड़ा मनुष्यों में प्रदर्शन क्यों। लेकिन वो तो मेरी अपनी राय हुई, मैं उसका कोई आक्षेप नहीं लूंगा। लेकिन ये जिसको लंगोटी नसीब नहीं होती है उसका क्या ऑप्टिमम। तो मेरी अपनी राय यह है कि जहां तक हमारे देश का संबंध है, हमको भोग की कोई मर्यादा गरीबों को नहीं बतलानी चाहिए। अमीरों को चाहे जो बतलाइए, और सारे धर्मगुरु तो अमीरों में ही जाते हैं, जितने धर्मगुरु हैं उनका क्लाइंटेल इनकी सुहा है ही कहां। गरीबों के लिए कोई मर्यादा नहीं। वो रोज अगर रबड़ी और पूरी खा सकता है तो खाए, मुझे बहुत खुशी होगी। जब आधा जाएगा अफड़ जाएगा तो पश्चिम के लोगों की तरह वो जाएगा चने फुटाने खाने के लिए और भेड़ वगैरह, वो अपने आप जाएगा। लेकिन तब तक उसको यह मत सिखाइए। इसमें से वो संघर्ष की बात आती है, इसी में से आती है।